تفسير. आयत नंबर 21 से 24 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन और सादिकीन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबसरा किया है कि मुखालफतों के तूफान में, सख्त आजमाइश के मौके पर ईमान लाने वालों की रविश क्या होती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वफादार होते हैं। और यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को, आपकी जिंदगी को जो है वो नमूने के तौर पर पेश किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा और अताअत की हदायत की गई है। फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 21 इसका ये इब्तदाई हिस्सा है। और कोई तकरीर मुकम्मल नहीं होती जब तक के मुकर्रर इस आयत का हवाला नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, आपके औसाफ को बयान किया जाए, तो ये आयत जो है बार बार दोहराई जाती है। किताबों की किताबें लिख दी गई, कैसेट, सीडीज, किताबें, वर्कशॉप जो है वो बहुत सी जो है वो चीजें पेश की गई जिसमें इस आयत को जो है वो नोट किया जाता है, बयान किया जाता है, मकालात में भी, तकरीरों में भी, गुफ्तगू में भी, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल जो है वो मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। अब आप देख लें कि क्या ये आयत जो है वो तकरीरों में हवाला देने के लिए नाजिल हुई थी, और नमूने से मुराद क्या है? क्योंकि जो भी रोल मॉडल है दो तरह के होते हैं, एक फेक होते हैं और एक रियल होते हैं, सच्चे होते हैं, और एक फिक्शन के अंदर होते हैं, या फिर रोमांटिक होते हैं, या फिर दुनियादारी के लिहाज से होते हैं, या उनका हकीकी जिंदगी में, अमली जिंदगी में उनका कोई भी उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और आप देखें कि बहसियत एक मुसलमान के, एक मोमिन और मोमिना के, एक ईमान लाने वाले मुसलमान के, आप अपना मुहासबा करें, आप सोचें आपका रोल मॉडल कौन है, आप किसके नमूने को अपने सामने रखती हैं, आप क्या करती हैं। जब कपड़े पहनने की बात आए तो कौन सा फैशन और तौर तरीका पसंद आता है, जब गुफ्तगू की बात हो तो किसके अंदाज को सामने रखती हैं, जब खाने की बात हो, जब लेने देने की बात हो, जब रिश्ते जोड़ने और तोड़ने की बात हो, जब जो है वो तजहीज व तकफीन की बात हो या फिर निकाह की बात हो, तो उस वक्त आपका किरदार क्या होता है, कभी आपने सोचा, कभी आपने जायजा लिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही, दर हकीकत था तुम्हारे लिए। और ये काना लफ्ज जो है ये था है, लेकिन ये अरबी जबान में है के माने भी देता है, ये तो था भी और है भी। लकुम, कुम की जमीर सारे मुसलमानों के लिए आई है, सिर्फ उस जमाने के मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ सहाबाए कराम के लिए नहीं, सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, फी रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल में, यानी फी रसूलिल्लाही से मुराद है अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, उस्वतुन हसनतुन, बेहतरीन नमूना है। यहां पे उस्वतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है हमजा सीन या, इसके मानी है किसी का इलाज करना, तसल्ली देना, मदद करना। और उस्वा के मानी होते हैं ऐसा नमूना, नमूने की ऐसी पैरवी कि जिससे तसल्ली हासिल हो सके। कितने खूबसूरत मानी है ना उस्वा के, कि चाल, ढंग, नमूनाए अमल, ऐसा नमूनाए अमल के जिसके जरिए से सुकून मिले, तसल्ली हासिल हो। मरहम पट्टी करने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे जख्मों का मदावा करने वाले, हमारे गमों का इलाज करने वाले, हमारे अमली जिंदगी में जो बेहतरीन नमूना है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। कुरान इसको बेहतरीन नमूना कह रहा है। कभी आपने सोचा इस बात पे कि ये आयत जो है ये गजवाए अहज़ाब पर तबसरे के मौके पे नाजिल हुई? अब आप देखें, और ये जो आयत है इसके दो मानी हैं। एक तो गजवाए अहज़ाब के हवाले से मुसलमानों को जो है वो बताया जा रहा है कि गजवाए अहज़ाब के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों के लिए एक नमूना थी, और दूसरे इसके मानी हैं कि मुसलमान हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जिंदगी को अपने लिए नमूना समझे, आपकी सीरत और किरदार के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। अब आप देखिए कि गजवा अहजाब के मौके पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लीडर थे, कैसे रहनुमा थे। ऐसा नहीं था कि आप आराम कर रहे हो और बाकी लोग खंदक खोद रहे हो, ऐसा नहीं था। लोग खंदक खोद रहे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोदने में अपने सहाबा के साथ मौजूद हैं, और यहां तक के खंदक का वो हिस्सा जो कि सख्त है, चट्टान आ गई है और सहाबा से खोदा ही नहीं जा रहा, तो उस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। कैसे कायद है कि आप तशरीफ लाते हैं और आप आकर उस चट्टान को तोड़ देते हैं। कैसे बहादुर जो है वो रहनुमा है। फिर आप दूसरी बात देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जब आपने दूसरों से मशक्कत का मुतालबा किया तो उसे बर्दाश्त करने में आप सबके साथ बराबर के शरीक थे। कोई तकलीफ ऐसी न थी जो दूसरे ने तो उठाई और आपने नहीं उठाई। भूख, सर्दी की तकलीफ में हर मुसलमान के साथ बराबर के शरीक है। हत्ता के सहाबा ने जब अपने पेट से कपड़ा हटाकर दिखाया कि हम भूखे हैं और पेट पर जो है वो पत्थर बंधा हुआ था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने पेट से कपड़ा हटाकर दिखाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर दो पत्थर बंधे हुए थे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि भूख प्यास में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के साथ बराबर के शरीक थे। ऐसा नहीं था आजकल के मुसलमानों के लीडरों की तरह कि वो तो अपने मोहल्लात में हैं और अवाम जो है वो गलियों के अंदर जो है उनका खून जो है वो बह रहा है। तो क्या है कि आप बराबर के शरीक थे। फिर आप देखिए कि जब आपको मैंने वो वाकया सुनाया था कि सहाबी जो थे एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हजरत जाबिर सहाबी जो थे, और उन्होंने आकर कहा था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप खाने के लिए तशरीफ ले आए, और उनकी बीवी ने कहा था कि आप सबको ना लेकर आए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के यहाँ जब दावत हुई थी तो उन्होंने चुपके से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा था कि थोड़ा सा जौ का आटा है और बकरी का बच्चा है, बस आप आ जाए खामोशी से ना, चंद चंद लोगों को लेकर आप हमारे घर तशरीफ लाएं। लेकिन आपने क्या किया, बुलंद आवाज से पुकारा, ओ खंदक वालो, जाबिर के यहाँ तुम्हारी दावत है, चलो जल्दी करो। और जाबिर से फरमाया कि जब तक मैं ना हूं हांडी चूल्हे पर से मत उतारना और ना आटे की रोटियां बनाना। तो अब आप देखें कि इस मौके पर क्या पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि लीडर अकेले बैठकर मजे से जाके खाना खा रहा है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खाना नहीं खा रहे थे जब तक के आपके सहाबा को खाना जो है वो पेश ना किया गया। तो अपने साथ सारे सहाबा को लेकर आए और उन्हें पहले दिया और फिर आपने जो है वो खाना खाया। तो ये है असल लीडर और कायद। फिर आप देखें कि ऐसा नहीं था कि आपने अपने बीवी बच्चों की हिफाजत का खास इंतजाम कर लिया हो। जहां पे बाकी मुसलमानों की औरतें मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, वहीं अजवाजे मोहतारा जो थी वो मौजूद थी। तो जिस परेशानी में और खतरे में और तकलीफ में और बनी कुरैजा की गद्दारी के खतरे में सारे मुसलमानों के बाल बच्चे मुब्तला थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे भी वहीं पे मुब्तला थे। ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल के कायद और लीडर क्या करते हैं कि अपने बीवी बच्चों को पहले भी हिफाजत से, और अगर मुल्क के अंदर भी खतरा हो तो दूसरे मुल्क में जो है वो जहाज के जरिए उनको पहले से भेज देते हैं, और खतरा हो तो खुद जो है वो निकल जाते हैं, अब अवाम जाने और अवाम का काम। तो आप देखिए कि आजकल के कायद जो है उनकी बातें देखें, यानी जब वोट लेना होता है तो कैसी तकरीरें होती हैं, कैसी चरब जबानी होती है, कैसी जो है वो हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई जबाने लेकर आते हैं, और क्या क्या जो है वो फार्मूले होते हैं और क्या क्या पॉलिसी होती है, और उसके बाद वोट लेने के बाद फिर दोबारा तभी नजर आते हैं जब फिर दोबारा इलेक्शन जो है वो होता है। तो बहुत कम लोग हैं कि जो किरदार के गाजी हैं। तो असल बात क्या है, इकबाल बड़ा उपदेशित है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो यहाँ पे जो बुजदिल हैं उनको गैरत दिलाई जा रही है, यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को, उनके नमूने को पेश किया जा रहा है कि ऐसा होता है कायद, ऐसा होता है लीडर, और ऐसे लीडर ही की अताअत करनी चाहिए और ऐसे लीडर की जो है वो रहनुमाई करनी चाहिए, ऐसे ही लीडर की रहनुमाई में जिंदगी का सफर तय करना चाहिए। तो एक मुसलमान का कायद, लीडर, हीरो जो है वो कोई फिल्मी एक्टर नहीं हो सकता, मॉडलिंग करने वाली कोई औरत नहीं हो सकती, कोई मर्द नहीं हो सकता, कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता। दुनिया के लिहाज से जो लोग हलाल हराम की तमीज किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं हो सकते। तो एक मुसलमान का जो हीरो है और जो असल रहनुमा है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना था। तो आज भी यानी सीरत, इखलाक, किरदार, लेना देना और मिलना मिलाना, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना और जीना क्या है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना है। और आप देखेंगे रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की बहुत सी सुन्नतें हैं, दाई करवट लेटना, दाएं हाथ से खाना खाना, और जो है वो दूसरों को देखकर सलाम में पहल करना, गम गुसारों की मदद करना, फिर इयादत करना, ताजियत करना। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना की हो? लेकिन आपकी सबसे बड़ी सुन्नत क्या थी? आपकी सबसे बड़ी सुन्नत जो थी वो जिसके लिए जब आप उठे तो उठे ही रह गए, फिर आप नहीं बैठे, जब अल्लाह ताला ने आपको उठा दिया ये कहकर, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर, यानी ए चादर ओढ़ कर लेट जाने वाले तुम कहाँ रह गए, उठो और लोगों को डराओ। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठे कि मक्का की गलियां इसकी गवाही देती हैं। फिर ताइफ में जाकर पत्थर खाए, जख्मी हो गए, फिर मक्का को छोड़ दिया, फिर बदर, फिर ओहद, और फिर उसके बाद आप देखें कि आजाब, यानी अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए आपने कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की। बदर में आपने नहीं चढ़ाई की, ना ओहद में की, ना आजाब में की, ना दूसरी जंगों में, काफिर ही जो है वो पलट पलट कर आते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना डिफेंड ही करते रह गए। और डिफेंड कैसी जुर्रत से किया, कैसी हिम्मत से किया। तो आज भी मुसलमान जो है उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने ही में जो है वो खैर है। कहा जा रहा है कि लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, कौन लोग जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए कायद लेंगे, वो कौन लोग हैं जो राह हक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलेंगे, उनकी क्या पहचान है? सिर्फ बातें करने वाले नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है, नंबर एक, लिमन काना यरजुल्लाह, नंबर एक, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखता हो। तो यहाँ पे पहली बात जो बताई जा रही है वो ये है कि जो अल्लाह की मुलाकात का उम्मीदवार हो, यरजुल्लाह के माने क्या है, अल्लाह की मुलाकात का उम्मीदवार, जिसे पता है मुझे मरना है और अल्लाह के पास जाना है, फिर मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, तो वो क्या करेगा, अल्लाह ही ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायद बनाया है ना, तो वो क्या करेगा, अपने अकवाल अफवाल अहवाल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या किया कि जिंदगी के हर मामले में हदायत दी हैं। सूरत आल इमरान आयत नंबर 31 में आप पढ़ी चुकी हैं कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे रसूल की पैरवी करो, तो मैं तुमसे जो है वो मोहब्बत करूंगा और तुम्हारे जो गुनाह हैं उन्हें माफ कर दूंगा। तो क्या करना है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करना है, पैरवी करनी है, अतात करनी है और इसी को अपने लिए जो है वो खैर का जरिया समझना है। आज देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तो बहुत है ना, और किसी कौम ने अपने कायद और लीडर से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी मुसलमान प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, लेकिन अफसोस के मोहब्बत की खेती को जो अतात अतात से सींचना था, तो आज ये जो मोहब्बत है ना ये खाली खोली रह गई है, अब इसमें अतात नहीं है, तो जरूरत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। तो नंबर एक, अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखने वाले फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करते हैं। नंबर दो, वल यौमल आखिरा, और जिसको आखिरत के दिन का यकीन हो, यानी आखिरत की मुलाकात का यकीन हो, तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायद बनाता है, वो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करता है। नंबर तीन, वज़कर अल्लाह कसीरा, और कसरत से फिर वो अल्लाह को याद करे, तो ऐसा नहीं है कि वो शख्स कभी कभार जो अल्लाह को याद कर ले, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कायद ऐसा शख्स बनाएगा जिसको अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, मरने के बाद दूसरी जिंदगी का यकीन है, और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह को कसरत से याद रखने वाला है। तो वज़कर अल्लाह कसीरा, इसके मानी क्या है, वज़कर अल्लाह कसीरा इसके मानी क्या है, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो कसरत से याद करना है ये दरअसल तमाम इबादात की असल रूह है। पूरे कुरान में किसी इबादत को कसरत के साथ करने का हुक्म नहीं दिया गया, आप इस बात को नोट कर लीजिए, यानी आप पूरे कुरान को पढ़ें आप देखेंगी कि किसी इबादत को कसरत से करने का हुक्म नहीं दिया गया, नमाज रोजा हज जकात जिहाद अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है पर कसरत से करने का नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो जिक्र अल्लाह है ये सारी इबादत की असल रूह है, मगज है। हजरत मुआज बिन अंस रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है, किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुजाहिदीन में सबसे ज्यादा अजर व सवाब किसका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करे। फिर पूछा कि रोजेदारों में से किसका सवाब सबसे ज्यादा है, फरमाया जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करे। फिर इसी तरह नमाज जकात और हज सदका के मुतल्लिक सवालात किए, हर मरतबा आपने कहा कि जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करे वही ज्यादा जो है वो अजर का मुस्तहिक है। इसे मुस्नद अहमद ने रवायत किया है। तो पहली चीज क्या पता चली कि ये इबादत की असल रूह है। दूसरी बात कि ये इबादत में सबसे आसान है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, आपने वुजू किया हुआ है तो ठीक, बेवुजू भी आप जो है वो जिक्र कर सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं, लेटे बैठे चलते फिरते हर वक्त जिक्र इलाही हो सकता है। फिर आप देखें कि जिक्र करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप फारिग हो तो आप करें, आप मसरूफ है तो भी जिक्र कर सकते हैं। जिक्र अल्लाह के जरिए दुनिया के काम भी दीन और इबादत बन जाते हैं, जैसे खाने से पहले बात की दुआ है, घर से निकलने की है, वापस आने की दुआएं हैं, सफर आप कर रही हैं, आप कारोबार करने लगी हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, तो आप जो है वो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, आप इस्तखारा करती हैं। जैसे आज ही मैं अपनी बेटी का साइंस प्रोजेक्ट है, तो उसके सामने दो तीन टॉपिक थे, तो उसको इस्तखारे की दुआ कुछ अरसा पहले उसने याद कर ली थी, तो मैं उसे कह रही थी, मैंने सोचा कि अब इसको ये अप्लाई करना शुरू करें, तो उसको मैंने तरीका बताया कि इस्तखारा कैसे करते हैं, और मैंने कहा कि तुम किस टॉपिक को चूज करो जो तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट है, अब तुम इसके लिए ना इस्तखारा करो, और फिर सारा समझाया कि इस्तखारा करने का मतलब क्या है। और जाहिर है कि हम खुद फैसले कर देते हैं, लेकिन बच्चों को खुद फैसले करने देने की जो है ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी उनको समझा बुझा कर कि ये दो तीन फर्ज के टॉपिक हैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए, तो अब आप देखो कि बेस्ट क्या है, आप सोचो इसके ऊपर, और फिर इस्तखारा करके फिर तुम कल अपने टीचर को जो है ना वो टॉपिक का नाम दे देना। तो बड़ी खुश हुई, और मैंने कहा कि इस्तखारा करना क्या है, ये दरअसल अल्लाह से मशवरा मांगना है। तो असल में हमें दीन को और दीन पर जो भी चीजें हैं उसको अपनी अमली जिंदगी में, आम जिंदगी में इसको नाफिज करना चाहिए। कोई भी गलती हो गई है तो अच्छा आप इस्तगफार कर लें, आप सैयदुल इस्तगफार कर लें, वो सबसे अच्छा है, बच्चा पूछता भी है ना, तो वक्तन फक्तन, और हम खुद करें, हम अल्लाह से गाफिल ना रहें, ये है असल बात। तो क्या होगा कि सारे दुनिया के काम भी फिर दीन बन जाएंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ऐसा नहीं था कि कभी कभार अल्लाह को याद करने वाले थे, वो हर वक्त अल्लाह को याद करने वाले थे। तो ऐसा शख्स जो हमेशा अल्लाह को याद करने वाला है, जो अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखता है, जो आखरत पर मुलाकात का यकीन रखता है, तो दरअसल ऐसा शख्स है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार को नमूना बनाएगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात में क्या किया, आप साबित कदम रहे, आपने दुख और मुसीबत को सब्र से बर्दाश्त किया, आपके पाए इस्तकामत में लग्जिश नहीं आई, आप सब्र और इस्तकामत का पहाड़ बन गए। आपने कैसे कैसे जो है वो अल्लाह की अताअत की, ईमान और अजीमत के साथ सब कुछ झील गए। तो ये बात जो है ना, ये मुसलमानों के लिए मशाल राह है, और हमें भी क्या करना है, रब की मुलाकात की वजह से, रजाए इलाही की खातिर, सवाबे आखरत की उम्मीद लगाकर, हमें जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलना है। सीरत पे अमल कीजिए, कट जाएगी खुद ही पैरों में जो हालात के जंजीर पड़ी है। आयत नंबर 22 है, वलम्मा राल मोमिनून अल अहजाब, और सच्चे मोमिनों का हाल उस वक्त ये था जब उन्होंने अहजाब को देखा। अहजाब से कौन मुराद है, अल अहजाब वो हमला करने वाले जो लश्करी थे वो मुराद है, कुफार भी, यहूदी भी और दीगर लोग जो थे। कालू तो कहने लगे, हाजा मा वादन अल्लाहु व रसूलहू व सदक अल्लाहु व रसूलहू। तो उस वक्त उन्होंने उनको देखकर कहा कि ये है वो चीज, हाजा ये है वो चीज, मा जिसका वादन अल्लाहु वादा किया था हमसे अल्लाह ने, व रसूल और उसके रसूल ने, व सदक अल्लाह व रसूलो, और अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच थी। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमान व तस्लीमा, इस वाक्य ने उनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। वमा ज़ादहुम, और नहीं इजाफा किया, इल्ला मगर, ईमान व तस्लीमा, इनके ईमान और इनकी सुपुर्दगी में। अब आप देखिए आयत नंबर 22 को पढ़ते वक्त आप आयत नंबर जो 12 है इसको भी सामने रखें। मुनाफिकों ने जब अहजाब को देखा था, यानी ग्रोह को, लोगों को देखा था, दुश्मनों को, तो जो मुनाफिक थे उन्होंने क्या किया था, मा वादन अल्लाह व रसूलहू इल्ला गुरूरा। तो जिनके दिल में मर्ज था उन्होंने कहा ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो एक फरेब था, एक धोखा थे। लेकिन जो सच्चा ईमान लाने वाले थे उन्होंने कहा ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इसके माने क्या है कि वही चीज है जिसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वादा किया था? तो दरअसल इसके माने ये हैं कि उन्होंने ये बात कही कि ईमान लाए हो तो जरूर आजमाए जाओगे, और फिर आजमाइशों को देखकर उन्हें अल्लाह के वादे याद तो आए, लेकिन उन्हें ये बात भी समझ आई कि ईमान लाते ही वादे पूरे नहीं होंगे, कि दुनिया के हाकिम बन जाओगे और फरिश्ते आकर तुम्हारी ताजपोशी की रस्म अदा करेंगे, बल्कि उन्हें ये बात जो थी पता थी कि सख्त आजमाइशों से तुमको गुजरना होगा, मुसीबतों के पहाड़ तुम पर टूट पड़ेंगे, तुम्हें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर फिर अल्लाह की अनायात होंगी और रहमत होगी, तब कहीं जाकर अल्लाह मोमिनों से अपना वादा पूरा करेगा। सूरत अल बकरा आयत 214 आप पढ़ लीजिए। अम हसीब तुम अंतद खुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा फज़ुलज़िलू हत्ता यकूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह अला इन नसरल्लाहि करीब। इसी तरह सूरत अल अंकबूत आयत नंबर 2 और 3 में आप पढ़ चुकी है ना, क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि बस ये कहने पर छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा, हालांकि हम उन सब लोगों को हमने आजमाया है जो इनसे पहले गुजरे हैं, और अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। तो सच्चे ईमान लाने वाले, उन्होंने जब दुश्मन को अपने सर पर देखा, 12,000 का तकरीबन लश्कर और सारा अरब टूट कर पड़ गया मुसलमानों पर, तो ये देखकर ये ईमान से डगमगाए नहीं, उनके कदमों ने लगजिश नहीं खाई, उनके ईमान और ज्यादा बढ़ गए। तो फरार हासिल करने की बजाय, भाग निकलने की बजाय, उन्होंने यकीन और इत्मीनान के साथ अपना सब कुछ अल्लाह के सपुर्द कर दिया। तो दरअसल इसी बात को बताया जा रहा है, आयत नंबर 22 बता रही है कि ईमान नाम है सपुर्दगी का। ईमान और तस्लीम दरअसल नफ्स की ऐसी कैफियत को कहते हैं जो दीन के हर हुक्म और हर मामले पर जो है क्या करती है कि जब उसका इम्तहान होता है, जब अल्लाह जान माल वक्त मेहनत ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी का मुतालबा करता है, तो ऐसा शख्स जो है क्या करता है, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देता है। फिर ईमान और तस्लीम, यानी फिर वो अल्लाह का फैसला समझकर उसको कबूल कर लेता है, फिर वो क्यों क्या तू तरह नहीं करता, फिर वो शुभात में मुब्तिला नहीं होता, फिर उसकी जिंदगी के अंदर तजाद नहीं पाया जाता, फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को अल्लाह के सपोर्ट कर देता है, अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट कर देता है। सबर, इस्तकामत, इकरार और तस्दीक जो है उसमें जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये जो आयात हैं, ये पैगाम दे रही हैं कि जो सच्चे मुसलमान थे, उन्होंने आजमाइश के मौके पर कहा कि इसी का तो अल्लाह ने वादा किया था, क्या कि ईमान लाए हो तो जरूर आजमाए जाओगे, और अल्लाह के रसूल का वादा तो सच्चा है कि ईमान लाने वाले जब साबित कदम रहते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला उनको फतह देता है, फिर वो कामयाब होते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि कमजोरी जब नहीं दिखाते, हक पर कायम रहते हैं इम्तहान आने पर, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देता है कि फिर वो फाते बन जाते हैं। तो यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि ऐसे होते हैं ईमान लाने वाले। अब आप देख लीजिए, जैसे हम बहुत दफा पढ़ते हैं ना कि जो जिंदगी में आजमाइशें आती हैं फिर इस पर सब्र करना चाहिए, सब्र, फिर डिप्रेशन में नहीं जाना, फिर जो है बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, फिर ये नहीं कहना कि क्यों मेरे साथ ही क्यों, मेरे पर ऐसी आजमाइश क्यों, मेरी ही किस्मत ऐसी है, और बाज लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही फूट गई है और हम तो बड़े ही बदकिस्मत हैं, कभी जमाने को गालियां, कभी अल्लाह को बुरा भला, और कभी डिफरेंट बातें ना। अब आप देखें कि हर शख्स आजमाइश में है, आपको नहीं पता, हर शख्स आजमाइश में है, और किसी की आजमाइश दुख की है, किसी की आजमाइश सुख की है, किसी की आपके इल्म में है और किसी को आप नहीं जानते, हर शख्स आजमाइश में है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आजमाए गए, सारे अंबिया आजमाए अल्लाह ने, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आजमाए गए। अल्लाह तो जरूर आजमाता है ये देखने के लिए कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं, और जो सच्चे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को अल्लाह के सपोर्ट कर देते हैं, इसी को ईमान कहते हैं। एक तो है ना ईमान के बस कलमा पढ़ लेना, तो ये क्या है कि ये एक इकरार है, ये एक दावा है, और ईमान की असल रूह क्या है कि फिर अपने आप को अपनी मैं को खत्म कर देना, क्यों क्यों को खत्म कर देना, अपने आप को, अपनी सोचों को, अपनी बातों को, अपने कामों को, अपनी जिंदगी के रवैयों को जो है वो फिर अल्लाह के सपोर्ट कर देना। और जो सच्चे मोमिन होते हैं वो अल्लाह के वादे पर यकीन रखते हैं कि मुझे मेरे अल्लाह ने ही मेरी आजमाइश की है, मेरा अल्लाह ही मुझे साबित कदम रखेगा और मेरा अल्लाह ही मुझे कामयाब करेगा। और फिर वो क्या क्यों और कैसे नहीं कहते करते, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानं व तस्लीमा। और फिर अजाब जैसे वाकयात जब आते हैं तो उनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी में और ज्यादा इजाफा कर देते हैं। तो प्यारी बहनों, हमारे लिए ईमान बस एक इकरार और तस्दीक ही नहीं, बल्कि इसके बाद जो है ईमान जो है वो इकरार और तस्दीक के बाद फिर अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देना है, और फिर अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे झुकाना है, अल्लाह के फैसलों पर राजी होना है। तो आप देख लें कि आप कितनी मुसलमान हैं, आधी पौ, आधा पौ या फिर पूरी मुसलमान, कितनी मुसलमान है? क्योंकि जितना अमल करती हैं अल्लाह के अहकामात पर फिर उतनी ही मुसलमान है ना, जितने अल्लाह के अहकामात के आगे आपने अपने आप को जो है वो झुकाया है। और यहाँ पे ये आयत नंबर 22 जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो जिंदगी है उस पर गवाही दे रही है कि उन्होंने मुश्किल हालात में साबित कदमी दिखाई, उन्होंने अल्लाह के वादों पर भरोसा किया, वो अल्लाह के वादों पर ईमान लाने वाले थे। तो रसूल भी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी, उन्होंने मुश्किल हालात में कभी कमजोरी नहीं दिखाई। तो ये है कि सच्चे ईमान लाने वाले। फरमाया मिनल मोमिनीना, ईमान लाने वालों में ऐसे लोग भी हैं। फिर फरमाया रिजालुन, रिजालुन सदकू, ऐसे मर्द सदकू जिन्होंने सच कर दिखाया, मा आहदुल्लाह अलैहि, अल्लाह से किए हुए अहद को उन्होंने सच कर दिखाया। फमिनहु मन कदा नहबहु, फिर इनमें से कोई ऐसा भी है जो अपनी नजर पूरी कर चुका, नहबहु अपनी मन्नत अपनी नजर, नून हा बा जो है इसके मानी है ऊंट का खांसना, जैसे ऊंट को जब खांसी आती है ना तो नून हा बा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी से बुलंद आवाज से रोने के लिए भी इस्तेमाल होता है, शदीद गिरिया किसी पर तारी हो, खांसी है, शदीद रोना है। फिर इसी तरह मौत और मौत के वक्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता के नजर के लिए भी, जैसे कोई जो है वो नजर मान लेता है तो उसके लिए भी फिर ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कोई अपनी नजर पूरी कर चुका है, नजर पूरी करने से क्या मुराद है कि उसने कहा था कि मैं अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा, यानी जब दीन को जरूरत पेश आएगी तो मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, लड़ूंगा और फिर शहीद हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि जो नजर मानी थी फिर उस नजर को जो है वो उसने तो पूरा कर दिया। फमिनहु मन यंतज़िर, और इनमें से कोई ऐसा भी है जो उस नजर को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा है। यानी दो तरह के लोग हैं, क्योंकि बाज सहाबी जो थे उन्होंने जो नजर मानी थी कि हम अल्लाह के रास्ते में जब जान माल की जरूरत पेश आएगी तो अपने आप को कुर्बान करेंगे, बचाएंगे नहीं, वो तो शहीद हो गए। तो बाज गज़वे बदर में शहीद हो गए, बाज उहुद में शहीद हो गए, और बाज ऐसे थे कि उन्होंने मन्नत तो मानी थी लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने जो है वो उन्हें कबूल नहीं किया। तो अभी जो है वो अपने नजर के कबूल होने के मुंतजिर हैं। वमा बदलू तब्दीला, और उन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली जो है वो नहीं दिखाई। अब आप देखिए कि यहां पर आयत नंबर 23 में रिजाल का लफ्ज है जो पहले इस्तेमाल किया गया है। रिजाल, रिजाल किसे कहते हैं? रिजाल इसका रूट है रॉ जीम लाम। अगर रिजल हो तो इसके मानी होते हैं पांव के, और अगर जो है रजुल हो तो ये मर्द को कहते हैं। अब आप देखें कि कुरान में जो है वो मर्द के लिए भी कितने सारे लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे एक रजुल है, एक इमराउन है या मरुन, दूसरा जकरुन है। रजुल जो है मर्द को कहते हैं, और इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कुवत, बहादुरी और मर्दानगी का इजहार हो। कुवत मर्दानगी का जब इजहार हो ना, तो उस वक्त रजुल लफ्ज आता है बहादुरी को जाहिर करने के लिए, और जब इंसानियत और इखलाकी कदरों को जाहिर करना हो तो फिर इमराउन आता है या मरुन आता है। मुरव्वत भी इसी से, इंसानियत हमदर्दी। और जब जकर लफ्ज आता है जाल का फ्रा, ये जिन्स जेंडर का जब इजहार करना जो है वो मकसद हो, तो उस वक्त जो है वो जकर जकर आता है, जकूर। आपने पीछे पढ़ा था ना, कुल आ जकरैन हर्रमा अमिल उन्सयैन, तो यहाँ पे रजुलन, तो रजुल वाहिद है, रिजाल इसकी जमा है, तो बहादुरी का मुजाहरा करने वाले। सदकू, उन्होंने सच कर दिखाया, मा अहदुल्लाह अलैहि, जो कुछ उन्होंने अल्लाह से वादा किया था, तो उन्होंने अल्लाह से अपने किए हुए वादे को सच कर दिखाया। इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक दो मिसालें पेश करती हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह नो कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये आयत मेरे चचा अनस बिन नदर के बारे में नाजिल हुई। ये बुखारी की रवायत है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, ये तिर्मिजी की रवायत है, वो कहते हैं कि मेरा नाम मेरे चचा अनस बिन नदर नून द्वादरा के नाम पर रखा गया था। वो गजवाए बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर ना हो सके, और ये बात इन पर बहुत शाक गुजरी, यानी उनके लिए बात बड़ी तकलीफ थी। ये बात उनके लिए बड़ी तकलीफ दे थी कि गजवाए बदर में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल ना हो सके। अनस बिन नदर ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर रहने का पहला मौका था जिससे मैं गायब रहा। अल्लाह की कसम, अगर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर होने का कोई मौका आया तो अल्लाह ताला खुद देख लेगा कि मैं क्या कुछ करता हूँ। रावी कहता है कि फिर वो डर गए कि इन अल्फाज के अलावा कुछ और लफ्ज कहना मुनासिब था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, अल्लाह खुद देख लेगा कि मैं क्या करता हूँ, फिर वो डर गए। फिर जब अगले साल ओहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए तो उन्हें रास्ते में साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हो मिले। उन्होंने पूछा, अबू अमर ऐन मीम रावो, ये अनस बिन नदर की कुनियत थी, अबू अमर कहाँ जाते हो? अनस बिन नदर कहने लगे, वाह, मैं तो ओहद के दामन में जन्नत की खुशबू पा रहा हूं। चुनाचे, मतलब वो उस वक्त ओहद के दामन की तरफ, जहां पे जंग बड़े जोरों से हो रही थी, उस तरफ भागते हुए जा रहे थे और कहने लगे कि मुझे तो वहां से जन्नत की खुशबू आ रही है। चुनाचे वहां पे दीवाना वार गए, बड़ी जुर्रत से लड़े, हत्ता के शहीद हो गए। इनके जिस्म पर जरबों, नेजों और तीरों के 80 से ज्यादा जख्म पाए गए। फिर अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरी फूफी रबी बिन नदर कहने लगी कि मैंने अपने भाई की लाश को, यानी उनकी जो मैयत थी, लाश थी, उसको सिर्फ इसके पोरों से मैंने पहचाना, यानी हाथ के पोरों से, हाथ की उंगलियों से, और वैसे जो है मैं अपने भाई को जो है वो पहचान भी नहीं सके, यानी इतनी, यानी उनके ऊपर तीर नेजे तलवार के 80 से ज्यादा जख्म थे। इसके क्या मानी है कि उन्होंने जो है वो दीवाना वार जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया था कि जब भी कोई मौका आएगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो हूं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं साथ दूंगा। फिर इसी तरह हमें मूसा बिन तलहा कहते हैं कि जब मैं मुआविया के पास गया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना सुनाऊं। मैंने कहा जरूर सुनाओ। उन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि तलहा उन लोगों में से हैं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके। इसे भी तिर्मिजी ने रवायत किया है। ये वो बुजुर्ग हैं जो गजवाए उहद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने हाथ पर तीर रोकते रहे, हत्ता कि एक हाथ जख्मी हो गया तो दूसरा हाथ आगे कर दिया था। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे तो मौका आने पर कैसे उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ दिया। और इन्होंने क्या किया था कि जैसे बाज लोगों ने जो है वो बैते उकबाए उला में वादा किया था कि हम साथ देंगे, बाज ने उकबाए सानिया में वादा किया था, बाज ने वैसे ही वादा किया था कि जब कलमा पढ़ा तो कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके जो है वो हम आपका साथ देंगे। तो अब आप देख लें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे वो किस तरह से जो है वो नजर मानने वाले थे और मन्नत मानने वाले थे, कुर्बानी करने वाले थे। और यहाँ पर जो है ये दो वाकया जो है मैंने आपके सामने रखे हैं। और तिर्मिजी की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा बिन अबैदुल्ला के बारे में फरमाया था कि जो शख्स किसी शहीद को रूए जमीन पर चलता हुआ देखना चाहे तो तलहा बिन अबैदुल्ला को देखे। तो तलहा बिन अबैदुल्ला क्या कर रहे थे कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो साथ दे रहे थे। और इनके बारे में आप और तफसील से सुन लें कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह कहते हैं कि मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह को गजवाए उहद के मौके पे जा लिया तो आपने फरमाया कौन है जो इनसे निमटे। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हों ने कहा कि मैं। इसके बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हों ने अंसार के आगे बढ़ने और एक एक करके शहीद होने की तफसील जिक्र की। सही मुस्लिम के हवाले से हजरत जाबिर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये सब शहीद हो गए तो हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हों आगे बढ़े और 11 आदमियों के बराबर तन्हा लड़ाई की, यहां तक कि इनके हाथ पर तलवार की एक ऐसी जरब लगी जिससे इनकी उंगलियां कट गईं। इस पर इनके मुंह से आवाज निकली हिस सी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते। और लोग देखते। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ने कहते हैं फिर अल्लाह ने मुशरिकीन को पलटा दिया। इन्हें उहद के दिन 39 या 35 जख्म आए और इनकी बिचली और शहादत की उंगलियां भी जख्मी हो गई। और फिर यानी जख्मी थे और उसके बाद जो है ये चल रहे थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह कहते हैं कि ये जंग कुल की कुल तलहा के लिए थी। ऐ तलहा बिन अबैदुल्ला तुम्हारे लिए जन्नतें वाजिब हो गईं और तुमने अपने यहाँ हूरे ईन का ठिकाना बना लिया। तो ये थे सहाबा जिन्होंने अपनी जान और माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की जो थी वो मन्नत मानी थी, वादा कर लिया था। तो ये दो मिसालें आपके सामने हैं और इसी तरह और भी सहाबा थे। तो यहाँ पे पहले जिक्र क्या है कि जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच कर दिखाया। नंबर एक फमिनहु मन कदा नहबहु, इनमें से कोई अपनी नजर पूरी कर चुका है। और आपने जो है वो एक हजरत अनस बिन नदर के बारे में सुना और दूसरा जो है वो हजरत तलहा बिन अबैदुल्ला के बारे में। और नहब के मानी क्या है? जिम्मेदारी, वादा, नजर। वा मिन्हु मैं यंतजिर, और कोई वक्त आने का मुंतजिर है। तो कौन है? बाज लोग ऐसे हैं कि अब वो इंतजार कर रहे हैं कि दीन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करें, वमा बदलू तब्दीला, और उन्होंने जो है अपने रवैये में कोई तब्दीली इख्तियार नहीं की, पैदा नहीं की। यानी ऐसा नहीं है कि भाग रहे हैं, डर रहे हैं, फरार हासिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो वादा किया है, जो कलमा पढ़ा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, साथ देने के लिए तैयार है। आयत नंबर 24, लियज़ी अल्लाहु الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे। लाम जो है यहाँ पर लाम जजा के लिए है, लियज़ी अल्लाहु الصادقين, ताकि अल्लाह ताला जो है वो जजा दे, ताकि अल्लाह ताला जो है वो बदला दे अस्वादिकीना सच्चों को, विसिदकहिम इनकी सच्चाई की। तो यहां पर जो है जो सच्चे ईमान लाने वाले हैं इनका जिक्र किया जा रहा है कि ये जो गजवा अहजाब हुआ, ये जो जंग हुई, तो इसको करने का मकसद क्या था कि सच्चों की सच्चाई का पता चल जाए और फिर अल्लाह ताला जो है उन्हें उनकी सच्चाई का बदला अता करे। ये है असल बात। और दूसरी बात बताई जा रही है कि वयुअज़्ज़िब अल-मुनाफ़िकीन इंशाअ औ यतूब अलैहिम, और मुनाफिकों को अल्लाह चाहे तो सजा दे दे और चाहे तो उनको माफ कर दे, उनकी तौबा को कबूल कर ले। अब आप देखें कि यहां पर जो है ये नहीं अल्लाह ताला कह रहे कि जरूर ही अल्लाह ताला उनको भी सजा देगा, बल्कि कह रहे हैं कि अगर कोई तौबा करके अपनी इसलाह कर लेता है तो अल्लाह चाहेगा तो उनको फिर माफ भी कर सकता है। इन्ना अल्लाह काना गफूर रहीमा, और अल्लाह तो बेशक गफूर रहीम है। तो ये जो है कि यहाँ पे जो आयत नंबर 24 है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि ये जो गज़वे अहज़ाब था या जो आजमाइशें होती हैं, ये इसलिए होते हैं कि नेकों को उनकी नेकी का बदला मिले और जो मुनाफिक होते हैं उनको उसकी सजा मिल सके, लेकिन अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह माफ करने वाला है। आयत नंबर 25, 25 सूरत अल अहज़ाब, फरद अल्लाहु अल्लज़ीना कफरू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, वरद अल्लाहु, और अल्लाह ने लौटा दिया और अल्लाह ने फेर दिया, अल्लाजीना उन लोगों को कफारू जिन्होंने कुफर किया था। तो वो जो अहजाब थे, वो जो काफिर आए थे, उन सबको अल्लाह ताला ने नाकाम ना मुराद लौटा दिया। बेगैज हिम, उनके गैज के साथ। गैज जो है ये गुस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जलन के साथ, अपने गुस्से के साथ उनको वापस लौटा दिया। लम यनालू खैरा, लम यनालू, नहीं उन्होंने हासिल की खैरा कोई भलाई, तो कोई फायदा हासिल किए बगैर वो लौट गए। वकफल्लाहु المؤمنین القتال, और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। तो यहां पर जो है दुश्मनों का शिकस्त खाना, उसका जिक्र किया जा रहा है कि बगैर जंग के दुश्मन जो थे वो वापस चले गए। और गजवाए अहजाब जो है वो दरअसल आप देखें कि इसमें जंग कोई नहीं हुई, बल्कि ये एक असाबी जंग थी, एक असाबी जंग थी कि जिसे बगैर जंग के अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों के हक में कर दिया। कोई खूनरेज मार का पेश नहीं आया, कोई जान और माल का जो है वो नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी जंग नहीं हुई जैसे गजवे बदर या ओहद या दूसरी जंगें हुई थी। तो ये जंग थी, इसके क्या नाम है, एक तो जो है वो जंगे खंदक, दूसरा गजवाए अहजाब, तीसरा जो है वो ये असाबी जंग थी, क्योंकि तकरीबन 1 महीने तक काफरों ने मुहासरा किए रखा। और फिर उसके बाद हजरत हुजैफा रजी अल्लाह अन्हु जो थे, जिनके साथ गर्म पानी का जैसे हमाम हो, और वो गए थे और जाकर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफरों के भागने की जाने की इत्तला भी दी थी, क्योंकि वो काफरों काफी परेशान थे, कोई भी फैसला कुन बात सामने आ ही नहीं रही थी, और आंधी ने उनके खेमों को उड़ा कर रख दिया और उनकी चौबे जो खेमों की थी हिला कर रख दी। तो अब जो सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैदान साफ है और दुश्मन को किसी खैर के हुसूल का मौका दिए बगैर ही अल्लाह ताला ने गुस्से के साथ वापस कर दिया है और इस जंग के लिए अल्लाह ही काफी हो गया। वकफल्लाहुल्मुमिनीन अल्किताल, और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। वकानल्लाहु कवियन अजीजा, और अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और बड़ा जबरदस्त है। तो अब आप देख लीजिए अल्लाह काफी हो गया से मुराद क्या है, कि अल्लाह ने आंधी और तूफान के जरिए से जो है उनके हौसलों को पस्त किया, मुसलमानों की मदद की। नंबर दो, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए जो जुनूद थे, जो फरिश्तों के लश्कर थे, उन्होंने दुश्मनों के कदम उखाड़ दिए और उनके दिल में मुसलमानों का रोब डाल दिया, काफरों के दिल में खौफ डाल दिया और वो भाग गए। तो अल्लाह कैसा है? कवियन अजीजा। इसके माने ये हैं कि जब अल्लाह जो है वो कवी है, अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला है, अल्लाह बड़ा ही जबरदस्त है, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ही को अपना वकील बनाना चाहिए। आपने आयत नंबर 3 में भी पढ़ा था ना, वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाही वकीला। अल्लाह ऐसा वकील है जो अल्लाह को वकील बना लेता है, अल्लाह उसको कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ता। तो आइए अल्लाह को अपना वकील बनाएं। आयत नंबर 26 और 27, 26 और 27, इसमें जो है बनू कुरैजा उनसे जंग का जिक्र है, उनकी अहद शिकनी और उनके अंजाम का जिक्र है। तो आइए आप गजवाए अहजाब के बाद अब गजवाए बनू कुरैजा के बारे में सुन लीजिए। ये दोनों जंगें बिल्कुल साथ साथ हुई थी। गजवाए अहजाब में यहूदियों के कबीले बनू कुरैजा ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी और वो काफरों के साथ मिल गए थे। तो इस सिलसिले में आप सुनिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दाहिया कल्बी, ये एक सहाबी थे जो बड़े ही खूबसूरत थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शक्ल मिलती थी। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दाहिया कल्बी की शक्ल में आए कि फरिश्तों ने तो अभी अपने हथियार नहीं उतारे, फरिश्तों ने अपने हथियार नहीं खोले और आपने अपने हथियार खोल लिए हैं। तो कहा कि मैं फरिश्तों के साथ और फरिश्तों के साथ आया हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ताकि बनू कुरैजा का मामला साफ कर दिया जाए। तो आप उठिए और अपने सहाबा को भी इसका हुक्म दीजिए। तो गज़वा बनू कुरैजा जो है ये जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस तशरीफ लाए, उसी दिन जोहर के वक्त, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के मकान में गुसल कर रहे थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया, क्या आपने हथियार रख दिए? हालांकि अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं रखे और मैं अभी कुरैश का ताकुब करके बस वापस चला आ रहा हूँ। उठिए और अपने साथियों को लेकर बनी कुरैजा का रुख कीजिए। मैं आगे आगे जा रहा हूँ, उनके कलों में जलजला भरपा करूंगा और इनके दिलों में रोब और दहशत डालूंगा। ये कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जो है वो रवाना हो गए। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से मनादी करवाई कि जो शख्स समा व ताअत पर कायम है वो असर की नमाज बनू कुरैजा ही में पढ़े। इसके बाद मदीने का इंतजाम हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हा को सुपुर्द किया, इनको अपना नायब मुकर्रर किया। इससे क्या बात पता चलती है, कहीं जाए तो अपने पीछे किसी को अपना जिम्मेदार मुकर्रर करना चाहिए। तो आपने मदीना में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम जो नबीना सहाबी थे उनको निगरान बनाया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जंग का फरेरा देकर आगे रवाना किया। तो बनू कुरैजा के कलों के करीब पहुंचे तो बनू कुरैजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों की बौछार कर दी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महाजरीन और अंसार के साथ रवाना हो चुके थे और आपने बनू कुरैजा के दयार में पहुंचकर अना नामी एक कुएं पर नजूल फरमाया, अब वहां पे ठहरे। मुसलमानों ने भी लड़ाई का आम ऐलान सुना और फौरन बनू कुरैजा का रुख किया। रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया तो सहाबा के दो ग्रुप पैदा हो गए, यानी सहाबा में दो ग्रुप बन गए। एक ने कहा कि बनू कुरैजा पहुंच कर ही नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये कहा है कि असर की नमाज बनू कुरैजा में पढ़नी है। और दूसरे लोगों ने ये कहा कि यानी कजा ना हो जाए नमाज, और हमें नमाज जो है वो रास्ते में पढ़ लेनी चाहिए। तो उन्होंने रास्ते ही में नमाज पढ़ ली, और सहाबा कराम के अंदर ये जो बात पैदा हुई थी, तो ये जब आपको बताई गई तो आपने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिन्होंने अतात की तो आप उन पर भी खामोश रहे, और जिन्होंने रास्ते पढ़ ली इस वजह से कि कहीं कजा ना हो जाए, क्योंकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है ना, तो इस पर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो इससे क्या बात पता चलती है, आप देखें कि एक अमल के बारे में हमें रसूल अल्लाह के सहाबा के दो तर्ज अमल सामने आ रहे हैं। तो ये जो ऐसा सेहतमंदाना इख्तलाफ होता है राय में, ये जो है ये दीन में वुस्सत का पता देता है। इसी को फिर फिका कहते हैं, सूझबूझ। बहरहाल अब जो मुसलमान थे ये बनू कुरैजा में पहुंचे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हुए और बनू कुरैजा के कलों का मुहासरा कर लिया। इस लश्कर की कुल तादाद 3,000 थी और इसमें 30 घोड़े थे। मुहासरा सख्त हुआ तो यहूद के सरदार, जो बनू कुरैजा का कबीला था, उसका सरदार था काब बिन असद। इसने यहूदियों के सामने 3 तजावीज पेश की, क्योंकि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ने दी थी कि या तो इस्लाम कबूल कर ले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल होकर अपनी जान माल बाल बच्चों को महफूज कर लें। काब बिन असद ने इस तजवीज को पेश करते हुए ये भी कहा कि अल्लाह तुम लोगों पर, उन्होंने जो सरदार था ना यहूदियों का काब बिन असद, उसने अपने यहूदियों से कहा कि वल्लाह अल्लाह की कसम तुम लोगों पर ये बात वाजे हो चुकी है कि ये वाकई नबी और अल्लाह के रसूल हैं और वही है जिन्हें तुम अपनी किताब में पाते हो। तो कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। दूसरा कहा अपने बीवी बच्चों को खुद अपने हाथों कत्ल कर दो, फिर तलवार सोंध कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निकल पड़े और पूरी कुव्वत से टकरा जाए, इसके बाद या तो फतह पाए या सबके साथ मारे जाए। तो ये तजावीज कौन दे रहा है? यहूदियों का सरदार काब बिन असद अपनी कौम के सामने रख रहा है। नंबर वन, इस्लाम कबूल कर लेते हैं महफूज हो जाएंगे। नंबर दो, खुद अपने हाथों बीवी बच्चों को कत्ल करके फिर जंग करते हैं, या तो फतह और या फिर मारे जाएंगे। नंबर तीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम पर धोखे से हफ्ते के दिन हम हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें इत्मीनान होगा कि हफ्ते के दिन तो लड़ाई नहीं करते ना यहूदी, सबत का दिन है ना, यौमे सब्त, वो तो इबादत का दिन है, तो चलो उस दिन ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जो कौम थी यहूदियों की, तीनों से कोई भी तजवीज कबूल ना की। इस पर उनके सरदार ने नाराज होकर कहा, तुम में से किसी ने माँ की कोख से जन्म लेने के बाद एक रात भी अकलमंदी के साथ नहीं गुजारी। अब इन तीनों तजावीज को रद्द करने के बाद बनी कुरैजा के सामने एक ही रास्ता रह जाता था कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दें और अपनी किस्मत का फैसला आप पर छोड़ दें। लेकिन उन्होंने चाहा कि हथियार डालने से पहले अपने हलीफ मुसलमानों से राब्ता कायम करें, तो मुमकिन है पता चल जाए कि हथियार डालने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दें। अबू लुबाबा का जो घर था ना, रजी अल्लाह अन्हो, इनका घर और बाग जो था बनू कुरैजा के इलाके में था, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं। अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हो इनके हलीफ थे। आपको पता है ना, मक्का का जो अरब पूरे में जो निजाम था, कबायली निजाम था, और हलीफाना एक दूसरे से मुआयदा कर लेते थे कबाइल और लोग के हम फलां फलां की मदद करेगा, फलां फलां की मदद करेगा, हत्ता कि दियत भी एक दूसरे की देते थे। तो ये हजरत अबू लुबाबा जो थे इनके हलीफ थे, यहूदियों के कबीले बनू कुरैजा के। इनके बागात बीवी बच्चे उस इलाके में थे। जब अबू लुबाबा रजी अल्लाह वहां पहुंचे तो मर्द हजरात उन्हें देखकर इनकी तरफ दौड़ पड़े। औरतें और बच्चे इनके सामने धाड़े मार मार कर रोने लगे। इस कैफियत को देखकर अबू लुबाबा रजी अल्लाह अनु पर रिक्कत तारी हो गई। यहूद ने कहा, अबू लुबाबा, क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें? उन्होंने फरमाया, हाँ, लेकिन साथ ही हाथ से हलक की तरफ इशारा कर दिया, जिसका मतलब था कि जिबा कर दिए जाओगे। लेकिन इन्हें फौरन एहसास हुआ कि ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत है। चुनाचे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनाचे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आने की बजाय सीधे मस्जिद नबी पहुंचे और अपने आप को मस्जिद के एक खंभे से बांध लिया और कसम खा ली कि अब उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने हाथ से खोलेंगे और वो आइंदा बनू कुरैजा की सरजमीन में कभी दाखिल ना होंगे। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे कि इनकी वापसी में देर हो रही है। फिर जब तफसीलात का इल्म हुआ तो फरमाया, अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं इनके लिए बख्शिश की दुआ कर देता, लेकिन जब वो वही काम कर बैठे हैं तो अब मैं भी इन्हें इनकी जगह से खोल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमा ले। इधर अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु के इशारे के बावजूद बनी कुरैजा ने यही तय किया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दे और वो जो फैसला मुनासिब समझे करें। हालांकि बनी कुरैजा एक तवील अरसे से जो है वो तवील अरसे तक मुहासरा बर्दाश्त कर सकते थे। एक तरफ इनके पास काफी मिकदार में खाने पीने का सामान था, पानी के चश्मे और कुएं, मजबूत और महफूज कले, दूसरी तरफ मुसलमान खुले मैदान में और शदीद सर्दी के मौसम में, जो खून को जमा देने वाली सर्दी थी और भूख की सख्तियां मुसलमान बर्दाश्त कर रहे थे। और आगाज़े जंगे खंदक के बाद भी पहले से मसलसल जंगी मसरूफियत की वजह से मुसलमान बहुत थके हुए थे, थकन से चूर चूर। लेकिन जंगे बनू कुरैजा दर हकीकत एक असाबी जंग थी। अल्लाह ने इनके दिलों में रोब डाल दिया था और इनके हौसले टूटते जा रहे थे। तो फिर हौसलों की ये शिकस्त इस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हुमा ने पेश कदमी की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने गरज कर ये ऐलान किया कि ईमान के फौजियों, खुदा की कसम, अब मैं भी या तो वही चखूंगा जो हमजा ने चखा या इनका किला फतह करके रहूंगा रजी अल्लाह अन्हुम। हजरत हमजा रजी अल्लाह ने क्या चखा था? जामे शहादत, गज़वाए उहुद में शहीद हुए थे ना, सैयदु शहदा का इनको लकब मिला। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हों का ये अज़्म सुनकर बनू कुरैजा ने जल्दी से अपने आप को रसूल अल्लाह के हवाले किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जो फैसला मुनासिब समझे करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मर्दों को बांध दिया जाए और फिर सारे वो जो उनके मर्द थे उनके हाथ बांधे गए। औरतों बच्चों को मर्दों से अलग किया गया। कबीले औस के लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए कि आपने बनू कैनुका के साथ जो सलूक किया है वो आपको याद ही है। बनू कैनुका हमारे भाई खजरत के हलीफ थे और ये लोग हमारे हलीफ हैं, लिहाजा इन पर एहसान करें। आपने फरमाया, आप लोग इस पर राजी नहीं कि आपके बारे में आपका एक आदमी फैसला करे? तो औस के कबीले के सरदार कौन थे? साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु। तो लोगों ने कहा कि हाँ, हम इस पर राजी हैं कि हमारे सरदार जो फैसला कर दे। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया गया। वो मदीना में थे, लश्कर के हमरानी आए थे। गजवे खंदक के दौरान बाजू की रग कटने से जख्मी हुए थे। उन्हें गधे पर सवार करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पास लाया गया। करीब पहुंचे तो इनके कबीले के लोगों ने इन्हें दोनों जानिब से घेर लिया। कहने लगे, साद अपने हलीफों के बारे में यानी बनू कुरैजा के बारे में अच्छाई और एहसान से काम लीजिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जज बनाया है, आप इनसे हुस्ने सलूक करें। मगर वो चुपचाप थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब लोगों ने बार बार कहा तो बोले, अब वक्त आ गया है कि साद को अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की परवाह ना हो। ये सुनकर बाज लोग उसी वक्त मदीना आ गए और कैदियों की मौत की खबर फैला दी। इसके बाद हजरत साद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपने फरमाया, अपने सरदार के इस्तकबाल के लिए उठकर जाओ। लोगों ने जब उन्हें सवारी से उतार लिया तो आपने फरमाया, ऐ साद, ये लोग तुम्हारे फैसले पर उतरे हैं। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हों ने कहा, क्या मेरा फैसला इन पर नाफिज होगा? लोगों ने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा मुसलमानों पर भी? लोगों ने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा और जो यहाँ है इन पर भी? इनका इशारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तरफ था, मगर ताजीम की वजह से चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। आपने फरमाया जी हाँ, यानी मुझ पर भी। तो आप देखिए कि जज मुकरर किया है तो उससे पहले पूछ रहे हैं कि जो मैं फैसला करूंगा तो आप भी कबूल कर लेंगे और अंसार भी, यहूदी सारे? तो आपने फरमाया हाँ। तो फिर कहा कि मेरा इनके मुतल्लिक ये फैसला है कि मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बनाया जाए, माल तकसीम कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इनके बारे में वही फैसला किया जो 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का फैसला है, और ये फैसला इंतहाई अदल पर मबनी था, क्योंकि बनू कुरैजा ने मुसलमानों की मौत और हयात के नाजुक तरीन लम्हात में जो बदअहदी की थी, इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को खत्म करने के लिए 1,500 तलवारें, 2,000 नेजे, 300 जिरहे और 500 ढाले मुहैया कर रखी थी, जिन पर फतह के बाद मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और फिर जो है उनके मर्दों को जब कत्ल करना शुरू किया गया तो जो बाकी लोग थे कैदी, यानी कुछ तो कत्ल किए जा रहे थे, और बाकी कैदियों ने अपने सरदार काब बिन असद से पूछा कि आपका क्या अंदाजा है कि जो हमसे आदमी ले जाया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो इनके सरदार काब बिन असद ने कहा तुम देखते नहीं कि पुकारने वाला रुक नहीं रहा, जाने वाला पलट नहीं रहा, ये खुदा की कसम कत्ल है। और इस तरह 600-700 के करीब जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया। फिर जो है वो इस मौके पर एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हई बिन अख्तब जो था ना, बनू नदीर का जो सरदार था और गजवा अहजाब का एक बड़ा मुजरिम जिसने लोगों को उकसाया था, ये था हजरत सफिया रजी अल्लाह ना का बाप। तो अब जब कुरैश और गतफान के लोग चले गए थे तो वादे के मुताबिक ये काब बिन असद के पास था, क्योंकि इसने कहा था ना कि अगर वो लोग चले भी जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और फिर उसी वादे को निभाते हुए ये इनके साथ था। जब इसको रसूल अल्लाह के पास लाया गया तो इसने बड़ा ही कीमती कपड़े पहने हुए थे, कीमती जोड़ा, हर तरफ से उसने एक एक उंगल फाड़ रखा था ताकि उसको लोग माले गनीमत में रखवा ना लें। इसके दोनों हाथ गर्दन के पीछे रस्सी से बांधे हुए थे। इसने रसूल अल्लाह को मुखातिब करके कहा सुनिए, मैं आपकी दुश्मनी पर अपने आप को मैं मलामत नहीं करता, लेकिन जो अल्लाह से लड़ता है मगलूब हो जाता है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहा लोगों, अल्लाह के फैसले में कोई हर्ज नहीं, ये तो नविश्ता तकदीर है और एक बड़ा कत्ल है जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर लिख दिया था। इसके बाद वो बैठा, फिर उसको भी कत्ल कर दिया गया। फिर साबित बिन कैस ने, ये एक सहाबी थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन्होंने गुजारिश की कि जुबैर बिन बाता और इसके घर वालों को जो है वो ना कत्ल किया जाए। क्यों? कि जुबैर ने जंगे बुआस में हजरत साबित बिन कैस पर जो है वो एहसान किया था, तो हजरत साबित की गुजारिश मंजूर कर ली गई। और फिर हजरत साबित ने जुबैर से कहा कि रसूल अल्लाह ने तुमको और तुम्हारे घर वालों को मेरे लिए छोड़ दिया है और मैं इन सब को तुम्हारे हवाले करता हूँ, यानी तुम सब आजाद हो। लेकिन जब जुबैर बिन बाता को यहूदी था, इसको पता चला, और फिर उस मौके पर इसने पूछा कि यानी पहले तो इसका बताया गया कि तुम्हें जो है वो छोड़ दिया गया, तो इसने पूछा कि मेरे घर वाले, फिर उन जो थे हजरत साबित, इन्होंने रसूल अल्लाह से इनके घर वालों का भी पूछा, अल्लाह के नबी ने घर वालों को भी छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि मेरे घर वाले तो मिल गए हैं और मेरा माल, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल भी दिलवा दिया, हजरत साबित को दे दिया। तो सब कुछ मिलने के बाद भी जब जुबैर बिन बाता को पता चला कि घर माल सब आजाद हैं इसके, फिर उसने कहा कि मेरे यहूदियों के कबीलों के जो सरदार हैं तो उनका क्या बना, साब बिन कुरैजा, अमर बिन कुरैजा, इब्ने अबिल हुकैक, तो बताया कि वो कत्ल कर दिए गए। तो उसने कहा कि जब वही कत्ल कर दिए गए तो फिर उनके बाद हम मैं अपने खानदान के साथ भी जी कर क्या करूंगा, और कहा कि मुझे भी जो है वो जिनको कत्ल किया जा रहा है उनमें शामिल कर लिया जाए। और इसने कहा कि यानी हजरत साबिर से कहा कि आपने तो मेरे एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता, और इसरार किया इसने कि मुझे मार दिया जाए, और फिर किसी मुसलमान से भी कत्ल कर दिया गया। और हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हो जो कि बंदा स्वाहले थे, इनका जख्म फूट पड़ा, ये मस्जिद नबवी में थे, वहीं खैमा लगवाया हुआ था ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत कर सके। तो सीने का जख्म फूट कर निकल रहा था, हत्ता कि मस्जिद की तरफ आ रहा था, तो खून देखकर कहा, खैमे वालों ये क्या है जो तुम्हारी तरफ से हमारी तरफ आ रहा है? देखा गया तो हजरत साद के जख्म से खून की धार रवा थी, फिर इससे मौत वाकया हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज की वफात पर कहा, साद बिन मुआज की वफात पर मौत पर रहमान का अर्श हिल गया। सुभान अल्लाह, इसे ही मुस्लिम की रवायत है। और एक और हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत साद बिन मुआज का जनाजा उठाया गया तो उस वक्त इनका जनाजा बहुत हल्का था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे फरिश्तों ने, इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठाया हुआ है। तो ये थे हजरत साद बिन अबी मुआज रजी अल्लाह, इनकी जब कब्र खोदी गई तो उसमें से खुशबू आ रही थी। तो बनू कुरैजा के मुहासरे के दौरान सिर्फ एक मुसलमान शहीद हुए, इनका नाम था खलाद बिन सुवैद, और ये भी बनू कुरैजा की एक औरत ने चक्की का पार्ट फेंक कर इन्हें मारा था। इसके अलावा हजरत ओकाशा के बारे में आता है कि इनके भाई थे अबू सिनान, मुहासरे के दौरान वो फौत हो गए थे वैसे ही। और हजरत अबू लुबाबा 6 दिन रातें सतून से बंधे रहे, इनकी बीवी हर नमाज के वक्त आकर खोल देती थी और वो नमाज से फारिग होकर सतून में बंध जाते थे। फिर रसूल अल्लाह पर सुबह दम जब तौबा की आयतें नाजिल हुई, आप हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह के घर में थे। हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह का बयान है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे कहा, ए अबू लुबाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। ये सुनकर सहाबाओं ने खोलने के लिए उछल पड़े, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्हें रसूल अल्लाह के बजाय कोई और नहीं खोलेगा। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े फजर के लिए निकले और वहां से गुजरे तो उन्हें खोल दिया। तो इस तरह ये जो गजवाए अजाब जो कि तकरीबन 25 दिन रहा, और उसके साथ ही ये जो गजवाए बनू कुरैजा हुआ, तो उस मौके पर ये आयात नाजिल हुई जिसमें दोनों गजवात के अहम वाकयात पर तबसरा किया गया। अब आप देखिए ये आयत नंबर 26 और 27 जिसमें गजवाए बनू कुरैजा पर तबसरा किया गया कि वह अनजल्लजीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबी मिन सयासीहिम व कजफा फी कुलूबिहिम अर्रौबा फरीकन तक्तुलूना व तासिरूना फरीका। फरमाया, व अनजला और उतार दिया अल्लजीना जिन लोगों ने ज़ाहरूहुम मदद की इनकी, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमलावरों का साथ दिया था, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन्हें उनकी गड़ियों से उतार लाया। वह अंजला और उतार लाया अल्लाजीना, वो लोग कौन यानी जो यहूदी थे, अल्लाह ताला उनको उतार के ले आया, उनके कलों से उतार लाया। ज़ाहरूहुम, ज़ाहरूहुम के मानी है जिन्होंने मदद की थी उनकी, यानी जिन्होंने यहूदियों ने काफरों की मदद की थी। मिन अहले किताबी अहले किताब में से, तो अहले किताब में से वो यहूदी जो के कुफारे मक्का की मदद कर रहे थे गजवे अहजाब के मौके पर, तो अल्लाह ताला उनको जो है उनके तलों से उतार लाया। मिन सयासीहिम, सयासीहिम जो है ये अहम लफ्ज है, स्वाद या स्वाद इसका रूट है, और ये कले को कहते हैं, हर वो चीज जिसके जरिए से तहफ्फुज हो, हर वो चीज जिसके जरिए से इंसान जो है वो अपने आप को बचा सके। ये बैल के सींगों को भी कहते हैं सियासी, क्योंकि बैल के सींग क्या करते हैं, बैल अपने सींगों से लड़ाई करता है और अपने आप को बचाता है। इसी तरह मुर्ग के पंजों को भी सियासी कहते हैं, सीसातुन, स्वाद या स्वाद का सीसातुन, क्योंकि मुर्ग जब लड़ता है तो पंजे से एक हमला करता है। तो हर वो चीज जिससे अपने आप को बचाया जाए, जैसे मुर्ग के पंजे, जैसे बैल के सींग, इसी तरह कले, और इसी तरह डिफेंड करने के लिए कोई अगर हिसार वगैरह बना लिया जाए। तो बनी कुरैजा ने क्या किया था, अपने कलों के अंदर छुप गए थे, फिर मुहासे से तंग आकर बिलाखिर मजबूरन उनको अपने किले से बाहर निकलना पड़ा, और उन्होंने अपने आप को मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया, जो भी आपने पढ़ा। तो वह अंजला, और उनको उतार लाया कौन, अल्लाह ताला। अल्लाजीना, वो लोग कौन, ये जो बनू कुरैजा के लोग थे, इन्होंने क्या किया था, ज़ाहरूहुम, इन्होंने मदद की थी, जाहिर हुए थे ये लोग, मिन अहले किताबी, अहले किताब में से, यानी बनू कुरैजा के जो लोग जो थे, इन्होंने क्या किया था, ये मदद की थी इन्होंने काफिरों की, मिन सियासीहिम, इनकी गड़ियों से अल्लाह इनको उतार लाया, वकजा फी कुलूबिहिम रोबा, और इनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि इन्होंने क्या किया कि अपने हथियार फेंक दिए, इन्होंने बगैर जंग के ही हथियार फेंक दिए, व कजाफा, और फेंक दिया, कजफ करना ना होता है डाल देना, तो फेंक दिया इनके दिलों में रोब अल्लाह ताला ने, फरीकन तक्तलूना, तो मुसलमानों ने मर्दों को तो कत्ल कर दिया, व तासिरूना फरीका, और दूसरे ग्रोह को जो है वो कैद कर लिया। तो हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ने के फैसले के मुताबिक इनकी लौंडी और गोला, इनकी जो काबले जंग मर्द थे उनको कत्ल कर दिया गया, और बाकी जो औरतें थी और बूढ़े और बच्चे वगैरह उनको जो है वो कैदी बनाया गया। आयत नंबर 27 जो आखिरी आयत है, वह औरसकुम, और हमने वह औरसकुम, और वारिस बना दिया तुमको, वह औरसकुम, और वारिस बना दिया तुमको, किनको, मुसलमानों को, अर्दहुम, इनकी जमीन का, तो वो जो इनका पूरा इलाका था, इनके मकान और इनका माल बागात वगैरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के कब्जे में दे दी, वह औरसकुम अर्दहुम, अल्लाह ताला ने इनकी जमीन का तुम्हें वारिस बनाया, वह दियारहुम, और इनके घरों का, वह अम्वालहुम, और इनके मालों का, वह अर्दन, और जमीन का, लम ततऊहा, नहीं कदम रखे इस पर तुमने, ततऊहा जो है वो त्वा हमजा वती करना, और इसके मानी होते हैं कि पांव रखना, जैसे रूंदना। तो यहां पे कहा जा रहा है कि तुमने जो है कोई ऐसे नहीं कि कोई जंग की थी, वह अर्दन, और ऐसी जमीन, लम ततऊहा, कि जिस जिसके ऊपर तुमने चढ़ाई नहीं की थी, तुम्हारे पांव नहीं वहां पे पड़े थे, यानी कदम नहीं रखे उस पर तुमने, अल्लाह ने वो जमीन भी तुम्हारे सपोर्ट कर दी। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे मुस्तकबिल की फतुहात की तरफ खुशखबरी दी गई है कि ये तो फौरी फौरी तुम्हें जो है वो फतह मिल गई, तो अभी और भी बहुत से इलाके तुम्हारे कब्जे में आएंगे जिन तक तुम्हारे कदम अभी नहीं पहुंचे। वह अर्दन, और ऐसी जमीन, लम तता ऊहा, कि जिस पर तुमने कदम नहीं रखे, मुराद है खैबर, मक्का, रूम, शाम की फतुहात की तरफ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया कि मुसलमानों, इसके बाद भी तुम्हें जो है वो और इलाके मिलने वाले हैं, मुसलमान और फतुहात भी करेंगे, और एक राय ये है कि इससे मुराद कयामत तक के दिन तक, यानी उससे पहले तक की जो भी मुसलमानों की फतुहात है सब शामिल है। तो अर्दन लम तथा उहा से मुराद जो है वो मुस्तकबिल की फतुहात है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शेइन कदीरा, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है, इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि अल्लाह के इरादे जो हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह को अपना वकील बनाना चाहिए। तो ये जो सबक है इसमें फैसला कौन तौर पर बताया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लीडर और रहनुमा हैं, और दूसरी बात ये कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह को अपना वकील बनाना चाहिए, और तीसरी बात ये कि सहाबा के किरदार को पेश किया जा रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सहाबाए कराम के किरदार को पेश किया जा रहा है कि सहाबाए कराम जो थे वो सबर और इस्तकामत के पहाड़ थे, इस्लामी फिक्र और इस्लामी किरदार रखने वाले, और इम्तहान उन पर आया यानी जब उनको आजमाया गया तो वो हक पर कायम रहे और उन्होंने अल्लाह से किए वादों को पूरा किया। तो हमें बहैसियत मुसलमान के अपने अंदर से निफाक को खत्म करना है और अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए कुर्बानी करनी है, और अज़्म व हिम्मत, अहद व पीमान जो है उसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना है, इखलास इख्तियार करना है, ईमान और तस्लीम की रविश पर चलना है, और ईमान को अपने अमल से सच साबित करना है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए, हम सबसे राजी हो जाए, हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।